मधुबन की धर्म सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धर्म सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
ओम शांति। सब मिलकर एक बार योग ओम शांति बोलेंगे। ओ शांति। ओम शांति एक ऐसा महामंत्र है जिसके अंदर सभी आत्मा के दिव्य गुण आ जाते हैं। कई बार दादी जानकी जी ओम शांति के साथ साथ और क्या बुलवाते हैं, ओम आनंद, ओम प्रेम, ओम सुख, ओम पवित्रता, ओम शक्ति, ओम ज्ञान, जो आत्मा के और सब गुण हैं। तो लेकिन ओम शांति एक ऐसा गुण है, महामंत्र है, जिसके अंदर सभी का समावेश हो जाता है और ये ही हमारे ज्ञान का पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है। पहला पाठ तो इसलिए कि कोई आता है तो पहले दिन आत्मा शांत स्वरूप है उसका ज्ञान दिया जाता है, और जब बाबा ने ये कहा है कि अंत मते सो गति का, तो अंत में जैसी हमारी मति होती है वैसी हमारी गति सदगति होती है। तो इसलिए अंत में अगर कहीं पर भी बुद्धि नहीं भटकी होगी और एक हम आत्म स्वरूप में स्थित होके एक बाप की ही याद जो शांति का सागर है और घर की याद रहेगी तो वैसी ही सदगति हो जाएगी। तो आज का जो विषय भी है वो प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा ने कैसे करके दिखाया, क्योंकि हमें सौभाग्य मिला है बाबा को देखने का, बाबा के साथ 6-7 साल रहने का। और सबसे बड़ी बात ये कि बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का, क्योंकि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी कौन सा साल था, 1969, तो उन अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी 1969 को हम यहीं पर थे, और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल में अपनी आंखों से जो बाबा की संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्टेज देखी, और जो हम सबका भी लक्ष्य है, हम सभी भी संपूर्ण बनना चाहते हैं, विजयी माला का मणका बनना चाहते हैं, तो उस बात को हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे हम सबके लिए भी ये मार्ग बहुत सहज हो जाए कि हम सब भी साकार बाबा की तरह उस स्थिति को प्राप्त कर सके। तो बात शुरू होती है, हम सब ने सुना है, उस समय हम लोग तो थे नहीं, 1936 की बात, जब यज्ञ की स्थापना हुई थी और जब बाबा ने साक्षात्कार किया, और कई साक्षात्कार किए बाबा ने, सृष्टि के महाविनाश का, नई दुनिया के स्थापना का, शिव बाबा का। तो जो सबसे अहम साक्षात्कार जिसने बाबा को बहुत बहुत सोचने पर मजबूर करा, वो था जब बाबा ने देखा, पहले तो कलियुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार, सिविल वार, एटॉमिक वार आदि आदि प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन उससे जैसे बाबा गीता में जैसे अर्जुन प्रसिद्ध है ना, कि अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने, ओ प्रभु इतना भयंकर विनाश, अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए भगवान, मोहनी रूप। गीता में जो अर्जुन के वाक्य है, महावाक्य, तो ऐसे ही बाबा ने जब ये देखा तो बस बाबा एकदम ही, जैसा यज्ञ इतिहास में दादियों के मुंह से सुना है, लिखा भी हुआ हिस्ट्री में, बिल्कुल बाबा एकदम जैसे कि अचंभित रह गए, और बाबा भी इतना भयंकर विनाश देख के। लेकिन शिव बाबा की तो योजना कुछ और थी, और उसके बाद बाबा ने जो ये दृश्य दिखाया, कौन सा, आकाश में तारे 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 हैं, और वो तारे जमीन पर आते हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाते हैं, और बस रास चल रहा है, खेल कूद। तो उस खुशी के वातावरण को देख करके बस बाबा जब उसमें तल्लीन थे, देख रहे थे, फिर बाबा की आवाज, बाबा कानों में आवाज सुनाई दी, कौन सी, तुम्हें ये दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। और बस बाबा तो सोच में पड़ गए, इतनी बढ़िया स्वर्गिक दुनिया, सब सदा बहारी मौसम, मैं ऐसी दुनिया कैसे बनाऊंगा, सोच में पड़ गए बाबा। और तब से बाबा का ये पाठ शुरू हो गया कि मुझे ये दुनिया बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है वो तो तब क्लियर नहीं था, वो बाद में और क्लियर हुआ। कैसे हुआ क्लियर, बाबा तब गुलजार दादी सुनाते हैं, 8-9 साल के थे, और गुलजार दादी ध्यान में गए, तो उन्होंने वहां पर, तब तक ये पाठ कुछ खुला नहीं था, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, कोई नहीं, बस बाबा के साथ रहते थे, मौज करते थे, बाबा को देखते ही ध्यान में चले जाते थे, कृष्ण का, नारायण का, सतयुग का साक्षात्कार होता था। और जब गुलजार दादी एक बार ध्यान में गए तो उन्होंने सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को देखा, लाइट का, बहुत तेज हो गए, तो वो तो देखती रह गई, बाबा यहाँ कहाँ से आ गए, बाबा तो हमारे साथ रहते हैं नीचे। उसके बाद जब वो ऊपर से आई तो उन्होंने मम्मा को बताया कि मम्मा आज मैंने सूक्ष्म वतन में वहां ध्यान में बाबा को वहां देखा। तो वो कौन बाबा थे, ये बाबा तो यहाँ है हमारे साथ। तो मम्मा को भी नहीं मालूम था, मम्मा ने कहा कि तुम बाबा से ही पूछो। बाबा से जब पूछा दादी ने, गुलजार दादी छोटी बच्ची तो थी 9-10 साल के, तो बाबा ने कहा कि अच्छा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि तब तक तो सूक्ष्म वतन का और संपूर्ण ब्रह्मा का कुछ ज्ञान नहीं था। तो बाबा ने कहा अगली बार जब तुम ध्यान में जाओ तो उनसे ही पूछना कि आप कौन हो। तो अगली बार जब ध्यान में गई तो वहां जाके उन ब्रह्मा के पास जब गए तो वहां पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो तुम्हारे सामने बाबा रहते हैं, साकार ब्रह्म मैं उनका संपूर्ण स्वरूप हूँ, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, और उनको मेरे जैसा बनना है। उसके बाद वो आई नीचे, बाबा को बताया। बस उस दिन से बाबा को धुन लग गई, मुझे वैसा बनना है। पूछा बाबा ने गुलजार दादी से कि क्या अंतर है ये जो तुम मुझे देखते हो और उसमें, कि बाबा शक्ल सूरत तो सब बिल्कुल आप जैसी है, लेकिन बहुत तेजोमय स्वरूप है, बहुत लाइट ही लाइट, एकदम अंग अंग में दिव्यता, जितना बच्ची के रूप में वो बता सकते थे वो सब बताया। तो उस दिन से बाबा को ये हो गया कि मुझे ऐसा बनना है, अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो पहली बात कि हम लोग भी सब बाबा के बच्चे हैं, तो मुझे भी लक्ष्य इतना क्लियर है, बिल्कुल भूल तो नहीं जाता कि मुझे ये बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, देवी देवता, ऐसा बनना है। पल पल पर याद आता रहे। और बाबा क्या करते थे, बीच बीच में जब भी दादी जाते थे, संदेशी जाती थी, पूछते थे और क्या अंतर है हम दोनों में, कि बाबा वो तेजोमय बहुत रूप है, आपका भी है, लेकिन अभी उतना तेजोमय नहीं है। और जैसे जैसे साल बीतते जाते थे, संदेशी जब जाती थी कहते हाँ बाबा अब दोनों में अंतर कम है, वो आपका भी स्वरूप और तेजोमय होता जा रहा है उन जैसा। तो ऐसे ही बार बार हम इंट्रोस्पेक्शन करें, देखें, अपने आप से पूछें कि मैं मेरे और मेरे अंतिम स्वरूप में क्या अंतर है। जब तक लक्ष्य हमारी बुद्धि में 24 घंटा नहीं रहेगा, तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति पूरी नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए आज भी बाबा ने कहा ना, अपने से पूछो मैं ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने लायक हूँ, आज की मुरली में था ना, अपने को मुरली में था ना, अपने को क्या करना है, राजाई तिलक देना है, आज की मुरली का सोल था ना, अपने को राजाई तिलक। तो हम सभी राजाई तिलक यानी कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना, यानी कि राजाई तिलक देना, क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो अपनी अंतिम संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। तो इसलिए राजाई तिलक के लिए और बाबा ने क्या कहा आज मुरली में, मुख्य 5-6 बातें बताई। हाँ बोलो आज क्या, याद की यात्रा, दूसरा सबसे मुख्य ज्ञान का विषय कौन सा, भाई भाई की दृष्टि। ये अभ्यास अभी आप 2 दिन हो ना, ये अभ्यास करो, क्योंकि हमें याद है जब बाबा की पहली मुरली चली थी, हम अहमदाबाद में थे तो हम लोगों का कुछ ग्रुप बना, और बस ये हरेक से जब देखते थे भ्रकुटी के बीच, ये आत्मा भाई, ये आत्मा, तो उससे क्या होता था, उन दिनों इतना अभ्यास पक्का हो गया था ये भाई भाई की दृष्टि का, तो ऑटोमेटिकली जो बाबा ने आज ये बताया, सर्व कर्मेंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं, आंख भी बिना इधर उधर बहुत नहीं तो कानों की भी होती है, ये सुने वो सुने दुनिया की बातें, आंखों का भी होता है ये देखें वो देखें, जीभ का होता है ये खाना, आप सब कर्मेंद्रियां एकदम शीतल होने लगती हैं केवल इस एक अभ्यास से, भाई भाई की दृष्टि से। और फिर उसके साथ साथ, क्योंकि पवित्रता का मतलब केवल यही दैहिक पवित्रता नहीं, हर चीज की, देखने की, खाने की, सुनने की, बोलने की, हर चीज की पवित्रता जीवन में आने लगती है। तो आज जो बाबा ने कहा ना कि यही अपने को राजाई का तिलक, तो ये अपने को एक एक चीज में कंपेयर करते चले। हमने देखा बाबा को, हाँ यही सामने जहाँ आजकल बैठते हैं ना, तो यहाँ पर अक्सर करके बाबा हाथ पीछे करके टहला करते थे, कई बार थोड़ा फ्री याद की यात्रा की मस्ती में, और विशेष करके अमृत वेले के बाद ना इधर, और बस जब भी कोई बाबा के सम्मुख आता था, बस बाबा देखते थे, आओ बच्चे, जो हाथ अभी भी चित्र लगाया ना वो प्रैक्टिकल में, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ आओ प्यारे बच्चे। और बस ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि बाबा के हाथ फैले नहीं और एकदम बाबा की बाहों में चुंबक की तरह हम चले जाते थे, खिंच जाते थे। फिर बाबा बस थोड़ा बाबा के सानिध्य में रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा की आत्मिक दृष्टि इतनी पक्की हो गई थी, जो हम सब ने भी सुना है ना, बाबा ने लिख लिख के पक्का किया मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, जो भी बाबा की युगल बच्ची बच्चा। तो भाव क्या है, बाबा ने प्रैक्टिकल में अभ्यास किया। अब सुनते तो हम भी रोज हैं मुरली में, लेकिन अपने से पूछे मैंने कितना प्रैक्टिकल में अभ्यास किया है, चाहे लिखने से, चाहे भ्रकुटी में देखने से, चाहे व्यवहार में, कि हाँ हमारे युगल बच्चा बच्ची बिजनेस पार्टनर ऑफिस के लोग वो सब आत्मा है। और उसकी पहचान क्या, हर चीज का मापदंड होना चाहिए अपने पास, और हर चीज को हम मापते चलें कि मेरी दिशा सही है, मैं सही रास्ते पर। तो क्या दिशा होती थी बाबा की, कि बाबा का आत्मिक पाठ इतना पक्का हो गया था कि जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ने दृष्टि दी, हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, देह का भान भूल जाता था। तो ये भी हम चेक करते चले कि मैं जिस भी आत्मा के संपर्क में आती हूँ या आता हूँ, दृष्टि देते हैं और बस वो आत्मा भी विदेही हो जाती है। और ये तब होगी जब हम खुद विदेही होंगे, अशरीरी होंगे, हमारा आत्मा का अभ्यास पक्का होगा। तो ये प्रत्यक्ष देखने में आता था। फिर क्या होता था, जब विदेही होते और बच्चे तो होते थे कई, सबको मिलना होता था, फिर बाबा प्यार से ऐसे हल्के से थप थप, हाँ बच्चे आओ 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 आओ, हम जैसे देह में खींच के आते। कोई आत्मा देह से अलग नहीं होती थी, लेकिन विदेहीपन का अभ्यास, आत्मा अशरीरीपन का अभ्यास, उसमें इतनी शक्ति उस आत्मा में, जैसे हीटर के पास जाओ गर्मी का अनुभव होता है, एसी के पास कूलर के पास जाओ ठंडेपन का अनुभव होता है, ऐसे इस विदेही अशरीरी इस आत्मा के पास जाने से, उसके शरीर स्पर्श से, सानिध्य से, उसके नैनों की दृष्टि से ही एकदम आत्मिक इतनी शक्ति आ जाती थी कि बस विदेही। फिर जब बाबा थपथपाते थे, देह में आते थे, फिर बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, फिर एक जाता था दूसरा आता था, दूसरे को भी ये अनुभव होता था, तीसरे को भी यही अनुभव होता था। तो ये दूसरी बात, ये हम चेक करते चले कि जितनी आत्माओं के संबंध, जिनसे दृष्टि होती है, जिनके प्रति बोल निकलते हैं, वो सारे के सारे उस आत्मा को विदेही सुखदाई, उसका सुख का अनुभव कराते हैं। क्योंकि हर चीज का मापदंड, तबीयत ठीक नहीं होती है तो भाई थर्मामीटर लगा लेते हैं, भाई बुखार है कि नहीं है पता चल जाता है, ब्लड प्रेशर लो है या हाई है देख लेते, मापदंड होता है तो उसका निदान होता है, क्योर होता है। ऐसे हर चीज का हमारे पास एक एक चीज का मापदंड होता रहे, उससे हमें पता चलता रहेगा मैं यहाँ पर कितना सही हूँ, मैं कितनी गलत हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है ज्ञान मार्ग में और आगे बढ़ने। क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य तो यही है, जितना ज्ञान योग धारणा सेवा सब कर रहे हैं, लक्ष्य ये है, हम सभी का पुरुषार्थ उस एक क्षण के लिए हो रहा है। किस क्षण के लिए, जब हमारे प्राण तन से निकलेंगे, उस एक सेकंड के लिए, क्योंकि अंतमति सोगति। सारा हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया और अंत में अगर बुद्धि इधर उधर भटक गई तो सारा खेल खत्म। और अंत में भी बुद्धि कब टिकी रहेगी, जो बाबा चाहता है कहीं बुद्धि न जाए, जब बहुत समय का ये अभ्यास होगा, बार बार का अभ्यास होगा कि हमारी बुद्धि कहीं भटके नहीं। और इसी के लिए बाबा का और तीसरा क्या पुरुषार्थ होता देखा हमने, हमने तो 61-62 के बाद ही देखा, लेकिन दादियां जो बताती हैं, इवन जब हम लोग मिला करते थे 61 एंड 62 में, जब ज्ञान में आए, तो तो बस तब बाबा बहुत हम सब के साथ ना यहाँ सामने जहाँ शांति बैडमिंटन वो टेनिस खेला करते थे, बाबा घूमने ले जाते थे वहाँ पर, साथ में हम जाया करते थे। बाबा कहते थे अपना जीवन कहानी लिख के दो, तब तो हमारी उम्र 16-17 साल की थी, 16 तो लिख के देते थे और बस बाबा देखते थे, शिक्षा देते थे, बाबा के साथ पिकनिक करते थे, जहाँ हिस्ट्री हॉल बना है सर्दियों के दिन में ऊपर छत पर, वहाँ बाबा के साथ धूप में भोजन वगैरह भी किया करते थे। इस तरह बाबा बिल्कुल जैसे साधारण अपने दादा, लौकिक में दादा पर दादा होते हैं घूम, बस बाबा वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते जा रहे थे कि बाबा हर चीज को समेटते जा रहे थे। बस जब 64-65 में हम लोग मिला करते थे, 65 वगैरह में, तो कोई बाबा को बात पहले सुनाया करते थे, बाबा पूरी बात सुनते थे, उसका निदान देते थे। लेकिन जब 65-66 में हमने देखा तो थोड़ी बात बोलते थे, बाबा कहते थे हाँ बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू किया है, अभी तो कहाँ पूरी बात बताई। नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा बात भी बता देता था और फिर उसके बाद समाधान दे देता था बाबा। तो बाबा हर तरफ से समेटता जा रहा था। क्यों? क्योंकि अंत समय बुद्धि वहीं भटकेगी जहां पर हमारा कुछ लगाव या झुकाव होगा। संबंधी हो, धन हो, वैभव हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जहां पर भी थोड़ा लगाव झुकाव होगा वहां पर बुद्धि, और वो हमें गति सदगति जैसी हम चाहते हैं वैसा उस मार्ग में बाधक भी बन सकता है। इसने बाबा हर तरफ से समेटते जा रहे थे धीरे धीरे। और लास्ट में तो हमने क्या देखा, 68-69 में जब हम आए तो बाबा धीरे 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 ना इतने अव्यक्त होते जा रहे थे कि 17 जनवरी 1969 को जब हम बाबा से मिले तो बस बाबा के सम्मुख गए, उस समय ज्यादा पार्टी तो थी नहीं, तो बस बाबा से मिले, बहुत मन में होता था भाई ये बाबा से उन्नति की बात पूछेंगे, सो उन्नति की, ये बाबा से सेवा की बात पूछेंगे, ये बाबा से अपने लौकिक उसकी बात पूछेंगे, बहुत बात होती थी। और पहले बाबा पूछता था, सुनता था, जवाब देता था। लेकिन उन अंतिम दो दिनों में हमने क्या देखा कि जब बाबा के पास गए, 5-6 बार मिलना हुआ 17 और 18 जनवरी को, तो बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा थोड़ा दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ना? बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा प्रश्न भी बता देता था, उसका समाधान उत्तर भी दे देता था। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, 5-6 बार दो दिन में ये हुआ। ये है स्थिति फरिश्ते की, मन जीते जगत जीत। जिसने अपना मन जीत लिया होगा, संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली होगी, वो दूसरे के मन के संकल्पों को भी सहज पढ़ लेगा और उसका समाधान कर देगा। प्रैक्टिकल में देखा उसमें ये, तो हमने बाद में हमें पता चला दादियों से जब पूछा तो बताया कि जैसे वही पानी होता है, पानी में अगर लहरें नहीं होंगी हम अपनी छवि भी स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ फेंक दो लहरें पैदा होंगी, अपनी छवि भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ऐसे ही अगर हमारे मन में संकल्प रूपी कोई भी लहर हो, भले विकारी संकल्प नहीं हो, व्यर्थ संकल्प भी नहीं हो, चाहे सेवा का संकल्प हो, लेकिन वो संकल्प सेवा का भी है लेकिन हमारी इच्छा के विरुद्ध चल रहा है ना, जिस समय हम याद में बैठे हम सेवा का भी संकल्प अगर आया वो भी जैसे कि व्यर्थ संकल्प में काउंट हो जाता है। इस कारण से देखना यह है कि संकल्प भी मेरी इच्छा से चल रहे हैं, क्योंकि ये संकल्प सिद्धि का समय है, समय जो चल रहा है संकल्प सिद्धि का। इसलिए ये तभी तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हैं, सुनते आए हैं, मन के लिए क्या क्या बोला है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन के ऊपर ही भक्ति मार्ग का सारा वो बना है। सूरदास ने भी पहले तो यही सोचा ना कि ये आंखें विकारी हैं, आंखें देखती हैं तो उसके अंदर सारे खराब संकल्प पैदा होते हैं। लेकिन उसके बाद सूरदास ने जितनी भी रचनाएं की हैं, आंखें फोड़ ली उसने, लेकिन जितनी रचनाएं की हैं सब उसकी रचनाओं में यही आता है, मन बहुत पापी है। ये आंख का दोष नहीं, देखने वाले का दोष है। इसीलिए मन बड़ा पापी है। इन आंखों से नहीं भी देख रहा है तो भी मन के अंदर ऐसे खराब संकल्प विकल्प ये सब बातें चलते हैं। इस कारण से आंखों का दोष नहीं बल्कि बाबा का भाव भी कई बार क्या होता है, कई बार बाबा कहते हैं ना आंखों के लिए। तो वास्तव में अभी बाबा की कुछ दिन पहले मुरली चली थी ना, इस सीजन में ही अंत से 3-4 बार एरिया सेवा करने की, कोई भी शिवरात्रि पर कोई एरिया रह ना जाए। तो सेवा तो सबने की होगी और केवल उस वक्त के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए प्लान है। लेकिन सोचो हर एक कोई तो ये कर नहीं सकता, जो बहुत बूढ़े हैं, जो बीमार हैं व्यक्ति, जिनका घर में अपना पार्ट है, जिनका बिजनेस है, वो सब कहाँ कहाँ जाके हर जगह सेवा करेंगे। तो इस कारण से बाबा ने हर चीज का मार्जिन दिया है, हर एरिया में सर्विस करो। तो उसका भाव क्या है, जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, ये भी कहा जाता है, ये जो है ना पूरा हमारा शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड का ही चित्रण है, ये पूरा ही हमारा एरिया है सारा। इस एरिया की मैंने सर्विस की है, चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं। तो ये मेरा आंख नाक कान हाथ मुंह, ये सब मेरा सर्विस एरिया है। और जितना मैंने स्व सेवा ये की होगी उतना बाहर की सेवा मेरी सफल होती चाहिए। आंखों के लिए जैसे बाबा सबसे मुख्य ये एरिया है। हाँ, तो देखो इसकी मैंने सर्विस की है, मेरी आंखों में इतनी दिव्यता है, जिसकी तरफ भी देखूं बाबा की तरह उसे विदेहीपन का अनुभव करा दूं, जिसको हो दिव्य दृष्टि का अनुभव हो। और ये कब होगा, इन आंखों ने, देखो एक चीज है, ये आंखें हैं, ये हैं दृष्टि, लेकिन आत्मा देखने वाली है, दृष्टा वो देखने वाली है, दृष्टा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि साक्षी दृष्टा हो कर चलो, साक्षी दृष्टि हो के नहीं। ये दृष्टि तो ये खिड़की है, ये खिड़की है, इन खिड़की के थ्रू हम कुछ देखते हैं अगर, तो देखने वाला तो कोई और है। खिड़कियां तो ये एक पार्ट है इसके, यहां से वहां देखने का। तो दृष्टि भी ये खिड़की है, आत्मा दृष्टा है, वो देखने वाली है। फिर बाहर जो कुछ भी हम देखते हैं वो क्या है, दृश्य है। दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा जो कुछ भी देखते हैं वो दृश्य। और जब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, दृष्टा बनकर देखते हैं, तब हमारा दृष्टांत बनता है। द्वापर युग से सारे हमारे भक्त हमारी जय जय गाथा करते आएंगे, वो हमारे दृष्टांत शास्त्रों में लिखे जाएंगे, वो चरित्र जो लिखे गए कृष्ण राम चंद्र हनुमान देवी देवताओं के जितने चरित्र हैं वो सब हमारे चरित्र हैं। जब हमने साक्षी दृष्टा होके पार्ट बजाया और इस दृष्टि के थ्रू, तो वो दृष्टांत सारे के सारे बन गए। इसीलिए बाबा का यही था, हर चीज हर चरित्र वो दृष्टांत बन गया। एक एक चीज बाबा की अगर याद करते हैं, क्या बाबा का चलना था, क्या देखना था। ये हिस्ट्री हॉल है, इस हिस्ट्री हॉल में ना बस बाबा आते थे, क्लास कराते थे। जब भी कोई मिलता था बाबा से तो बाबा 3 स्थानों पर मिलते थे, जैसा होता है, अगर दो तीन लोग होते थे तो बाबा अपने कमरे में भी मिलते थे। बाबा का कमरा अभी जितना है उतना बड़ा नहीं था, बस जहां आगे पलंग है उतना था, छोटा सा, और चौड़ाई में भी इतना नहीं था, बहुत छोटा, कुछ 8x10 का या 8x8 का कमरा होगा। एक तरफ पलंग, एक तरफ नीचे वो जो बिछा हुआ है गद्दा, यहाँ पर बाबा बैठ के मिला करते थे, वो होती थी। और बीच में बस एक टेबल, एक कुर्सी पड़ी हुई थी, बस और कुछ नहीं। पीछे से उसका रास्ता होता था, सामने से रास्ता नहीं। तो जब दो एक लोग होते तो यहाँ मिलते थे, थोड़ा पानी मिलेगा। और जब थोड़े ज्यादा लोग होते थे तो 5-6 होते थे तो बाबा की झोपड़ी में मिलते थे बाबा। और जब बड़ी पार्टी, पहले जमाने में बड़ी पार्टी का मतलब तो 10-12-15 लोग से ज्यादा होते ही नहीं थे एट ए टाइम, तो फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, ये मिलने का होता था बाबा। तो जब बाबा से मिलने जाते थे, ब्राह्मणी ले जाती थी, तो बस देखती थी, बस बाबा बैठे हैं अपने मगन में मगन, आंख खुली हुई है लेकिन बुद्धि से जैसे बाबा कहीं और है, देह यहाँ है लेकिन सोच बाबा का बिल्कुल न्यारा है। और जब टीचर जाती थी बाबा के पास कि बाबा बाबा, तो बाबा को कई बार जैसे थोड़ा सा ना, जैसे एक जर्क कि बाबा जैसे देह से न्यारा था लेकिन आवाज सुनने से देह में जैसे आया। अच्छा बच्ची, हाँ आ गए, हाँ बोलो कि बाबा मैं फलानी जगह से पार्टी लेके आई हूँ, दिल्ली से, बम्बई, कलकत्ता, जो भी हो। हाँ बच्ची, बच्चों को लाओ। तो बस आते थे, फिर बाबा एक एक से मिलते थे। तो बात क्या है कि जब चाहे देह में आना और जब चाहे देह से न्यारा हो जाना, ये अभ्यास अंत समय में ये ही अभ्यास काम में आए। जब चाहे हम देह में आए, पार्ट बजाएं, जो भी निमित्त पार्ट है, और जब भी थोड़ा सा फ्री हुए समय मिला, देह से न्यारे होके, और हम जो बाबा ने हमारे अनेक धाम बताए हुए वहां चले जाए, ये कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ने का जैसे चौथा पांचवा लक्षण, देह से न्यारा होते हुए। हमेशा देखते थे बाबा को, यही इतना सारा कारोबार और ये होते हुए जहां भी 5-7 मिनट भी बाबा को मिले, बस देह से न्यारे। क्योंकि वर्तमान समय बाबा ने बताया, तुम बच्चों के सामने पेपर तो बहुत आएंगे लेकिन दो मुख्य पेपर, कौन से दो मुख्य पेपर जो बाबा ने अव्यक्त मुरली में बताए हैं, याद है? हाँ देखो, एक एक जो भी मुरली होती है ना, उस मुरली का उस वक्त सुनते हैं अच्छा लगता है, लेकिन बाद में एक बार, दो बार, तीन बार उसका मनन, चिंतन और पढ़ाई होगी तो वो पॉइंट बुद्धि में बैठेगी, तभी तो हम उस पर पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो वैसे तो बाबा ने अनेक पेपर बताए हैं, भाई आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, खाना होगा लेकिन खाने लायक नहीं, पीना ही हो, पानी भी होगा जहरीला हो जाएगा, वायु प्रदूषण तो देख रहे हैं, आदि आदि। एक ये पेपर, पुराने बाबा ने कहा 5 विकारों का पेपर, पुराने स्वभाव संस्कार का पेपर, और प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर, इविल सोल्स का पेपर, आदि आदि ये है। तो ये सब तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ के हैं, और साथ साथ लेकिन वर्तमान समय जो बाबा ने बताया है, जो दो पेपर विशेष होंगे, जितना अंत समय निकट आता जा रहा है, एक पेपर शरीर का पेपर हर एक का। क्यों? क्योंकि इतने 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब, वो जो चुकतु होना है वो वर्तमान समय, तो वो इस शरीर के द्वारा ही होना है, काफी योग, रोग और भोग, इन तीन के द्वारा। या तो हम इतना योग कर ले इतना कि और किसी की आवश्यकता न रहे, और लेकिन इतना चूंकि योग नहीं हो पाता तो फिर क्या होता है कि भोगना के द्वारा, रोग के द्वारा, किसी न किसी, इसीलिए उस स्थिति में भी हम सदा खुश रहे, हमारी मानसिक जो है ना प्रसन्नता बनी रहे। क्यों? क्योंकि मेरा विकर्मों का बोझा हल्का हो रहा है और इस कारण से उसमें क्या होगा। बाबा ने कहा जितना यहाँ हल्का, क्योंकि परम धाम सबको जाना है, हम लोगों को हर एक आत्मा को जाना है, लेकिन वो पवित्र धाम है, वहां अपवित्र नहीं जा सकते। तो पवित्र पूरा संपूर्ण बन के ही जाना है और तभी होंगे जब किसी भी तरीके से हम पवित्र होंगे। तो इसीलिए इस बात को खास ध्यान देना है कि चूंकि वहां जाना है इसलिए मुझे पवित्र बनना है। तो रोग भोग के द्वारा हो तो उसे हम यही खुशी खुशी भोगे कि चलो मैं वहां धर्मराजपुरी में सीधा धर्मराज को टाटा करता हुआ चले जाएंगे, कोई भी उसकी सजा के भागी नहीं बने। बात क्या हो रही थी? शरीर का पेपर। और ये सबके सामने आएगा क्योंकि शरीर से आत्मा को निकलना है और शरीर के सारे हिसाब किताब इतने अनेक अनेक जन्मों के वो सब खींचेंगे। तो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा जैसा बाबा को था। और उससे क्या होगा, एक सेकंड में यहाँ, एक सेकंड में, जब हमारी रचना, साइंस हमारी रचना है, साइंस में भी ये विशेषता है, थोड़ा जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाओ, क्लोरोफॉर्म दो या एनेस्थीसिया, तो उससे क्या है कि शरीर से जैसे आत्मा का भान अलग हो जाता है। शरीर में कटिंग भी करेंगे, खून निकलेगा, लेकिन शरीर को कुछ महसूस ही नहीं होगा क्योंकि उस समय आत्मा जैसे न्यारी हो गई है। चेतना, चेतन तो आत्मा है लेकिन आत्मा ने अपनी चेतनता उस स्थान से जैसे खींच ली है। तो ऐसे ही अंत समय में भी बहुत शरीर जब खींचेगा, कष्ट होंगे, दुख होगा। हम दादी को देखते थे, दादी प्रकाशमणि जी को, बस डॉक्टर जाते थे हम लोग रोज शाम को उनके पास, दादी के जब बैठते थे देखते थे, पूछते थे दादी डॉक्टर आता तो आपको तो बहुत इसमें दर्द हो रहा होगा। दादी कहते थे नहीं मुझे तो कोई दर्द नहीं। नहीं नहीं दादी आप ऐसे ही बोल रही हो, हम लोगों का दिल रखने के लिए इस बीमारी में या ऐसे में तो बहुत कष्ट होता है। तो दादी कहते नहीं मैं सच्ची बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि बस जब थोड़ा भी दर्द होना शुरू होता है ना, मैं बस मैं आत्मा हूँ, अलग हूँ, मैं न्यारी हूँ, बस मैं अपने को विड्रॉ कर लेती हूँ शरीर से अलग। तो शरीर में दर्द होगा लेकिन उसकी भान नहीं होगा मुझे, उसकी चेतना नहीं होगी शरीर में क्योंकि मैंने विड्रॉ कर लिया, अलग कर लिया। तो इस रीति से ये चीज जो है ये अंत समय में हमें अशरीरी बनने में न्यारा फरिश्ता स्वरूप। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज हमें ना आभास करा देगी कि अब मेरा अंतिम पार्ट है ये। अब मैं आत्मा, जिसे जो भीष्म पितामह का गायन है ना, क्या गायन है, इच्छा मृत्यु का, 18 जनवरी का बताऊं, ऐसे हिस्ट्री हॉल में थे बाबा, ऐसी मुरली चलाने, वहां तीन संदली रखी है ना, एक दो तीन, अभी आजकल तो दो रखी है, पहले तीन संदली होती थी, इधर बाबा बैठते थे, इधर मम्मा बैठती थी और बीच की संधि खाली होती थी, तो जब भी कोई पार्टी आती थी, पार्टी के लोग आके एक एक करके अपना परिचय देते थे और फिर उसके बाद परिचय सबका हो जाता था, और जब जाने का दिन होता था उससे एक दिन पहले फिर अपना अनुभव सुनाते थे कि इन 5-6 दिनों में 7 दिन में हमने क्या पाया, क्या लक्ष्य लेके जा रहे हैं, क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो ये 3 संगलियां वहां पर सदा रहती थी। तो ये जो चीज है शरीर का विड्रॉ करने का, ये शरीर का पेपर तो सबके सामने, उस दिन भी बाबा 18 जनवरी को भी ना बाबा आए क्लास में, बस रोज तो क्लास होती है जैसे लगभग 8:45 बजे, उस दिन बाबा ने तो 7 बजे ही ना, जमुना प्रसाद भाई है यहाँ जो मुरली वाले, उनको बुला के बोला कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सबको बता दो। तो बस पहले हिस्ट्री हॉल के बाहर ही जो बगीचा जैसे वहाँ स्कूल का घंटा जैसे बजता है ना वैसे रखा होता था, तब तो माइक वाइक ये सब होते नहीं थे, तो उन्होंने आके घंटा बजाया, जो भी थे मधुबन वासी या हम लोग बाहर के जो आए हुए थे इकट्ठे हुए और सबने बोला, सबको उन्होंने बताया आज बाबा ने कहा है बाबा जल्दी क्लास कराएगा। तो वो फिर सबको पता चल गया, सब खाना वाना खा के वहां बस लगभग 7:30-8 तक सब इकट्ठे हो गए और फिर बाबा क्लास में आए। तो उस वक्त हमने देखा बिल्कुल बाबा का जैसे बस फरिश्ता, रुई रुई का सा जैसे शरीर होता है ना, उस रीति से बाबा आए क्लास कराया। और वैसे सर्दी के दिन थे, बाबा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और हमेशा अक्सर करके बाबा को खांसी आती थी कई बार, और तो बाबा को गला साफ करने की कोशिश करनी पड़ती थी, गला साफ करते थे फिर मुरली चलाते थे। तो कई बार बाबा हंसी में कहते थे, मैं शिव बाबा को बोलता हूँ बाबा मेरा ये कौन है खांसी, इस सखी से मेरा पीछा छुड़ाओ। तो बाबा क्या कहते थे, तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तो तुम्हें चुकतू करना है, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कंसेशन करूं तो मेरे तो सारे बच्चे हैं। तो देखो जब ब्रह्मा के साथ भी कोई कंसेशन नहीं तो आपके या मेरे साथ कोई कंसेशन होगा, तो जो कर्म किए हैं वो तो भुगत नहीं है, इसीलिए उनको खुशी खुशी है और वो भुगते हैं। इसलिए बाबा अक्सर करके ना, सबसे बड़ी बात ये कि बाबा की स्वस्थिति इतनी पावरफुल होती जा रही थी कि हर परिस्थिति के ऊपर बाबा की विजय, मानो खांसी आई तो उस वक्त हमें लगता था बाबा को बड़ा कष्ट हो रहा होगा, कभी कभी आंख भी जैसे गीली जैसे लगते थे ऐसे हो रहे। तो लेकिन दूसरे ही क्षण, ये तो थी मतलब परिस्थिति बाहर की, खांसी आई, शरीर भी पराया है ना, शरीर की परिस्थिति, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा क्या कहते थे, बाबा के पास में एक ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा होता था कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का, तो बाबा कहते थे अरे बच्चे देखो आज तो ये पुराना शरीर है, खांसी है, तकलीफ है, दर्द है, ये है, विघ्न आते हैं, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, बस वहां दुनिया में कितना, कोई खांसी नहीं, कोई दुख नहीं, खुशी। और बाबा बस एकदम, बाबा का चेहरा एकदम बदल जाता था, स्वस्थिति इस परिस्थिति के ऊपर तुरंत ही विजय प्राप्त कर लेती थी। हमें भी अपने को ये चेक करते चलना है कि कोई भी बाहर की परिस्थिति आए, मैं तुरंत ही उसे अपनी स्वस्थिति से उस पर विजय प्राप्त कर लेती हूँ। मानो बैठे बैठे कोई समाचार आया, मानो कोई फलाने हमारे निकट मित्र संबंधी आदि का एक्सीडेंट हो गया, तबीयत बहुत सीरियस है या कुछ और हो गया ना, तो परिस्थिति वो है भयानक, लेकिन मेरी स्वस्थिति ऐसी हो कि वो परिस्थिति मेरे ऊपर असर न डाले, बल्कि मैं अपनी स्वस्थिति से उस परिस्थिति को, उसका जो दुख है, अशांति है, जो व्यर्थ संकल्प चलने लगे, उसको मैं बदल दूं। ये बाबा का प्रत्यक्ष और यही अंत में काम आएगा कि कैसी हमारी स्वस्थिति है और कितना परिस्थितियां तो बहुत भयानक होगी। पांचों तत्वों का इकट्ठा आक्रमण होगा, पुराने विकारों का, संस्कारों का, सारे इतनी भयानक। लेकिन अगर मेरी स्वस्थिति स्ट्रांग है तो कोई भी परिस्थिति हम पे वार नहीं कर सकती। और ये बाबा को देखा, बस ऐसे करके बाबा बस खुशी में फिर आ जाते थे। और उस खुशी सब बच्चों में लाने के लिए बाबा क्या कहते थे, पहले भी बताया है, बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। ये खग्गियां माने ऐसे हो, इतना चेहरे पर ना ये होना चाहिए कि बस गम का कोई नामो निशान ना हो। तो ऐसी स्थिति बाबा भी, हम बच्चों आज भी बाबा ने कहा ना खुशी, और खुशी तब होगी, कब खुशी तभी होती है जब हम विजय प्राप्त करते हैं। जहां कहीं भी कोई हार होती है ना, तो भले कोई हो ना हो, हार में हमारी खुशी खत्म हो जाती है, मन गमगीन हो जाता है और सारा खुशी गायब हो जाती है। तो ये देखते चलना है कि कभी भी मेरे जीवन में कोई भी हो, और हार कब होती है, जब हमें मालूम होता है ये मर्यादा है, ये मुझे काम करना है, ये नहीं करना है। लेकिन पुराने संस्कार, पुराने बातों के वशीभूत होके न करने वाली बात हम कर लेते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो भले किसी ने देखा नहीं, किसी की हमारा कोई सोशल स्टेटस डाउन नहीं होगा, कोई हमें डांटेगा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अंतरात्मा हमारी अंदर ही अंदर खाएगी। मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया ये। इस कारण से बाबा यही कहते हैं कि जितना जितना, इसीलिए बाबा ने क्या है, तीन सर्टिफिकेट भी जो बोले है ना, कौन सर्टिफिकेट तो सबको मालूम है ना, हमें सबको तीन सर्टिफिकेट लेने हैं। नहीं मालूम, निराकारी निरहंकारी, ये तो बाबा ने तीन अक्षर ये स्थिति बताई है। सर्टिफिकेट जब मेडिकल पास है, वेरी गुड, सब देखो कितने एक्सपर्ट है। हा? एक अपने भगवान से सर्टिफिकेट, तो भगवान से सर्टिफिकेट लेने के लिए बाबा ने एक बात बताई है, कौन सी, भगवान किस पर खुश होता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जितनी हमारी अंदर की सच्चाई सफाई होगी उतना बाबा राजी होगा, उतना बाबा से सर्टिफिकेट मिलता जाएगा। लेकिन पहचानेंगे कैसे, हम कहे भाई मैं तो बहुत सच्चा साफ हूँ, भले हमारी बहन जी नहीं समझती या भाई नहीं समझता या परिवार नहीं, लेकिन मैं तो सच्चा बहुत साफ हूँ। पहचान क्या, वो भी बाबा ने बताया, सच तो बिठो नाच, सच्चा जो है खुशी में नाचता रहेगा। और क्या होगा, सच की नाव डोले लेकिन डूबे नहीं। इतना अथक विश्वास हो, परीक्षा आ रहे, पेपर आ रहे, लेकिन विजय मेरी निश्चित है। अंत में मैं कभी भी, भगवान मेरा साथी है, मेरी हार कभी नहीं हो सकती, इतना अटल विश्वास होगा ना, भगवान से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसीलिए सच्चाई सफाई ये केवल बाहर की नहीं, बाहर की भी और अंदर की भी। इसीलिए ये सच्चाई सफाई के लिए बाबा वो भी कहते हैं, हमारा रहने का स्थान भी उतना साफ हो, क्योंकि अशुद्ध आत्माओं का वास वही होता है जहाँ गंदगी होती है, कब्रिस्तान होता है, मुर्दा घाट होता है, वहां पर अशुद्ध भटकती आत्माओं का वास। अगर हमारे में भी अंदर की कोई भी गंदगी हो, घृणा ईर्ष्या द्वेष, कोई भी प्रकार की अपवित्रता हमारी अंदर की होगी, भटकती हुई अंत में बहुत आत्माएं भटकेंगी। क्योंकि बाबा ने कहा अकाल मृत्यु और समूह मृत्यु, अकाल मृत्यु भी होगा समूह मृत्यु। एक बार अर्थक्वेक आता है हजारों लाखों लोग, कच्छ भुज का तो आप सबको अनुभव है ना, उस भूचाल ने ये देखा कि ये जवान है इसको न ले जाओ, ये बूढ़ा है इसे ले जाओ, नहीं सबको। तो जो आत्माएं बहुत भटकती हैं, उन्हें जब गर्भ में शरीर तैयार नहीं मिलता तो फिर वो किसी न किसी शरीर का आधार लेके अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए अंदर की भी कोई गंदगी नहीं, ये गंदगी है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, ये सारी गंदगी है, वहां पर उन आत्माओं का वास। इसीलिए बाबा कहता है अब अंदर बाहर से साफ बनो। तो एक तो ये सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा कौन सा सर्टिफिकेट है? हाँ, तो भगवान से सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन सी एक बात याद रखनी है? सच्चाई, सफाई। दूसरा, परिवार से सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि दूसरा पेपर भी परिवार का है। मैं बता रहा था, एक शरीर का पेपर और दूसरा परिवार का पेपर। ये पेपर बहुत क्यों? क्योंकि अभी हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो जब हम किसी आत्मा को देखेंगे, अरे ये आत्मा 40 साल पुरानी, इसके अंदर भी ये कमी, इतना क्रोध, ये विकार, मैं तो अभी 5 साल पुरानी हूँ, 10 साल पुराना हूँ, तो क्या होगा? उस आत्मा को देख करके ना, परिवार के कोई आत्मा को देख करके हमारा पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है और हम भी उस विकार के वशीभूत हो जाते हैं। इसके लिए पेपर से पास होने के लिए क्या करना पड़े? हर पेपर का मालूम हो और पेपर से पास होने की विधि मालूम हो। कौन सी विधि है? एक तो हम कोई भी परिवार की आत्मा को केवल एक काल की दृष्टि से न देखें। वर्तमान में ये है, लेकिन मैं ये न भूलूं ये वो ही आत्मा जो भगवान की चुनी हुई आत्मा है। भगवान ने इसे चुना है और बाबा ने कहा है कि मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी आज का जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है उससे भी महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने चुना है और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए हम उस आत्मा को केवल वर्तमान की दृष्टि से न देखें, भूत और भविष्य, ये वही आत्मा है जो डबल ताजधारी आत्मा थी, तभी भगवान ने चुना है। वर्तमान समय इसका ये थोड़ा लो पार्ट चल रहा है, माया के या कमजोरी के वशीभूत है, लेकिन फिर से इस आत्मा को महान डबल ताजधारी बनना है। कोई भी फिल्म होती है तो भी उसमें एक जैसा पार्ट थोड़ी होता है, सबके पार्ट अलग है, कोई हीरो है, हीरोइन है, कोई विलेन है, कोई कॉमेडियन है, नाचने वाला, गाने वाला, सबके अलग अलग पार्ट है, तभी वो फिल्म बनती है और नाटक सक्सेसफुल होता है। तो बाबा ने भी कहा है कि ये सृष्टि नाटक मुझे अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये जो बना है बड़ा एक्यूरेट बना है, इसमें सारे तरीके के पार्ट हैं, इसीलिए कभी भी किसी का या अपना पार्ट देख के कोई प्रश्न पैदा ना हो, ऐसा क्यों, ये नहीं होता तो ऐसा होता है। भगवान को जब प्रिय है और भगवान बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर ने बनाया है, तो हमें अप्रिय होने की कोई बात ही नहीं है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध, इसलिए अंत में पूरी हमारी सफलता तो ये परिवार का पेपर, एक तो ये याद रहे कि तीनों कालों की दृष्टि से हर आत्मा को देखें, और दूसरा ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी आत्मा का कोई पार्ट देखेंगे, उसका निमित्त जो हमारी ड्यूटी है, उस आत्मा का बड़ों को सूचित करना अथवा कोई भी किसी भी प्रकार की सावधानी दिलवाना, निमित्त वो करें, लेकिन अपनी अवस्था को उसकी स्थिति के कारण डामाडोल न होने दें। एक ये है, ये है परिवार से सर्टिफिकेट लेने का तरीका, और इसकी विधि है हरेक को रिस्पेक्ट देते चलो, सम्मान और रिस्पेक्ट देते चलो। जो आत्मा, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पड़ोसी हो, बिजनेस वाला हो, ना हो, लेकिन हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, और सम्मान हम तभी दे सकते हैं जब उसकी कोई कमी कमजोरी हमारी बुद्धि में नहीं होगी। कमी कमजोरी अगर बुद्धि में होगी तो सम्मान उसे अंदर का हम नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। तो यह है दूसरा सर्टिफिकेट। तो हर एक में एक एक बात याद रख ली, और तीसरा सर्टिफिकेट किससे लेना है? अपने आप से। उसके लिए तो पहले ही बता दिया आपको, ये देखना है अपने आप से सर्टिफिकेट कब नहीं मिलता हमें, जब हम कोई मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो नहीं मिलता। तो इसीलिए हमसे कोई मर्यादा का उल्लंघन न हो, जब जानते हैं बुद्धि में ये मर्यादा है लेकिन उल्लंघन हो जाता है, तो ये है परिवार का पेपर जो आने वाला है, क्योंकि ये भी भूल जाते हम, राजधानी स्थापन हो रही है। तो राजधानी में तो कोई राजा महाराजा होंगे और कोई दास दासियां वगैरह साधारण प्रजा, तो यहां पर अगर उनमें कोई कमी कमजोरी है पुरुषार्थ में, तो वो तो स्पष्ट है कि वो जाके दास दासी राज बनेंगे, साधारण प्रजा बनेंगे। लेकिन मैं उसकी वजह से क्यों अपना राजाई पद छोड़ दूं, उसका प्रभाव ना पड़े। एक ये पेपर जो बाबा ने बताया। और 18 जनवरी को और हमने क्या देखा उस दिन, बाबा ऐसी मुरली चला रहे थे सामने हिस्ट्री हॉल में, हम भी सामने ही बैठे हुए थे। तो अचानक बैठे बैठे हमारे मन में ख्याल आया कि क्या ही बढ़िया हो बाबा हमें भी पुरुषार्थ की कोई अच्छी बात बताए, जिससे हमारा पुरुषार्थ भी और हो आगे महान और कोई कमी कमजोरी निकले। तो देखो मन में संकल्प आया, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भक्त जो है सच्चे दिल से अगर कोई भी कामना करता है तो भगवान उसको दर्शन देते हैं और भगवान पूछते हैं वरदान मांग लो, और जब वो मांगता है तो भगवान के मुंह से क्या निकलता है, बस तथास्तु, और फिर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा ही अनुभव किया, मन में संकल्प आया और कुछ सेकंड की भी देरी नहीं हुई, तुरंत ही बाबा ने बस नाम लेकर के कई महावाक्य उच्चार दिए। 18 जनवरी की मुरली में वो आज भी टेप्ड है और अभी भी जब भी उन्हें सुनते हैं समझते हैं तो बहुत और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणाएं मिलती हैं। तो भाव क्या है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी ना, तो हम किसी भी आत्मा के मन के भाव को जान सकेंगे और उसके मन के भाव को पूर्ण कर सकेंगे। ये अपने को चेक करते चलना है जो जो ये बातें बताई। और क्या उस दिन मैंने देखा, आप 18 जनवरी की मुरली सुनो, बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी इतनी बाबा की फ्लॉलेस मुरली चली जैसे बाबा को कोई खांसी थी ही नहीं। तो ये इस बात का सूचक है कि अंत में जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी तो शरीर के जितने भी रोग हैं, कर्म भोग हैं, उन सब के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए अंत मते सो गते तभी तो होगी जब, और बस एक बार भी खांसी नहीं आई और बाबा उठ के गए, दरवाजे पर जाके बोला बाबा ने, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। यानी कि ये इस बात का प्रतीक है क्या, भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान, बाबा को ये आभास, बस ये मेरा अंतिम साकार मिलन हो रहा है और अब मैं बच्चों से छुट्टी ले रहा हूँ। तो अपने को ये भी चेक करते चलना है, मुझे भी बाबा संकल्प रहे कि अंत में बस आपके पास आना है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के आना है। शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन अगर अर्थक्वेक हुआ, अभी ये बिल्डिंग हिले, ऊपर से छत गिरे, चारों तरफ हाहाकार मच जाए, किसी का हड्डी टूट रहा है, खून बह रहा है, तो ऐसे में कितनी बाबा की याद रहेगी, कह नहीं सकते। लेकिन हर चीज का बाबा ने ये बताया है कि जब भी कोई बात होगी समय पर बाबा टच करेगा और आपके पैर ऑटोमेटिकली उधर उठेंगे जहां सेफ्टी होगी। बहुत घटना, यहां तो बहुत पत्र आते रहते हैं, लाटूर का अर्थक्वेक का, कचबुज का, कोई कहीं पर कोई साइक्लोन तूफान आया, पचासों कैसे बाबा अपने बच्चों को पहले से टच करता है, उसी वक्त एक सेकंड पहले, और आपके कदम ऑटोमेटिकली उधर बढ़ जाते हैं जहां सेफ्टी होगी। लेकिन इसके लिए यही चाहिए, बुद्धि की लाइन पूरी क्लियर, वॉइसलेस, जैसे वायरलेस कनेक्शन होता है, मोबाइल होता है ना, तो कहीं से कहीं बात कर लो, ऐसे वायरलेस कनेक्शन हमारा हो, तो वो वॉइसलेस कनेक्शन, निर्विकारी कनेक्शन बाबा से होगा, समय पर वो टच होगा। तो ये एक बाबा का प्रत्यक्ष देखा, एक एक चीज जो प्रत्यक्ष देखी ना, ये सब कर्मातीत अवस्था में। और सबसे बड़ी बात ये है जो बाबा ने कहा, हम ये सब पर तो विजय प्राप्त कर रहे हैं, अपना ज्ञान योग धारणा सेवा, लेकिन सब उससे भी बड़ी बात कौन सी है, प्रकृति जीत बनना। जो बाबा कहते हैं प्रकृति के पांच तत्वों को भी आपको इतना शुद्ध बनाना है कि अंत तक वो साधने, यही तो शरीर है। सतयुग के आदि से लेकर हमने 84 जन्म जो लिए है, भले भिन्न भिन्न नाम रूप से लिए, लेकिन पांच तत्व वही है ना। तो ये तत्वों का साथ आदि से लेकर अंत तक है, 24 घंटे का साथ है। इसीलिए इन तत्वों को हमें शुद्ध बनाना है, और तत्वों को शुद्ध बनाने के लिए क्या करेंगे, मनसा सेवा, और इन तत्वों के साथ हम दोस्ती कर लें, मित्रता कर लें, जिससे कि ये तत्व जो है अंत समय में मित्र की तरह हमारा साथ निभाए। मित्र मित्र की रक्षा करता है दोस्ती में, मुश्किलात में, सब में। तो इस पांच तत्वों के साथ हम मित्रता कर लें। कैसे करेंगे मित्रता? मित्रता दोस्ती किनके बीच में होती है? समान संस्कार वालों के। तो एक तत्व के, एक एक तत्व के अनेक संस्कार हैं, लेकिन यहां हम सिर्फ एक संस्कार का वर्णन करेंगे, एक तत्व का। हा? क्या जल का सबसे बड़ा संस्कार क्या होता है? शीतलता, ठंडा। और जल का संस्कार है एडजस्ट होने का। अभी पानी है ना, जिसमें लो उसमें एडजस्ट हो जाता है, गिलास में लो गिलास में, कटोरी में लो कटोरी में, चम्मच में लो चम्मच, इतना फ्लेक्सिबल। ऐसे ही मेरा भी संस्कार ऐसा हो ना, हर एक के साथ एडजस्ट होके चल सके। ये ना कहें कि इनके साथ तो चलना मुश्किल है, संस्कार नहीं मिलते, इनके साथ आसान है। हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होंगे, तभी तो हम विश्व महाराजन बनेंगे, तभी तो वो आत्माएं हमें अपना इष्ट देव मानेंगी। उनके साथ यहाँ जितने इष्ट एडजस्ट होके चल सकेंगे, वो दूसरी आत्माएं द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक हम उनके इष्ट देव हो जाएंगे। सतयुग त्रेता में तो चैतन्य में होंगे, हम राजा होंगे वो प्रजा के रूप में, या दूसरे दोस्त किसी के रूप में, लेकिन द्वापर युग से वो हमारी मूर्ति की पूजा करेंगे, हमारे सामने भजन कीर्तन। वो क्यों? क्योंकि हम उसके इष्ट देव हैं। इसलिए यहाँ पर एक हम अपना संस्कार इतना फ्लेक्सिबल, हरेक के साथ संस्कार मिला के चलते चलो। उससे क्या होगा, संस्कार मिला के चलते चलेंगे तो कभी भी जल जो है ना हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। जितना पुर आ जाए, फ्लड आ जाए, बारिश हो जाए, जितनी जितने सुनामी आ जाए, लेकिन समय पर बाबा ऐसी टचिंग करेगा, हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जल हमारे सहयोग का कारण बन जाएगा, मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, दुख शांति का कारण नहीं। ऐसे ही पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सहनशीलता। और पृथ्वी का गुण है दातापन का, पृथ्वी देती है। आप एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, कोई भी हो, गेहूं, अनाज, सारे फल फूल, पेट्रोल, हर चीज धरती माता देती है, दाता है। ऐसे अगर हमने धरती का दातापन का गुण धारण करा होगा ना, तो कभी भी धरती हिलेगी, अर्थक्वेक होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो हमारी मृत्यु का विनाश का कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि धरती से हमने अपना संस्कार मिला लिया। तो धरती क्या दे सकते हैं हम, स्थूल चीज का तो लिमिट है, किसी को खाना कपड़ा पैसा अनाज देना हो वो तो भाई लिमिट है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, स्नेह, आदर, इसमें तो कोई खर्च होता नहीं। और इसके लिए यह है क्षमा भाव। संस्कारों में भिन्नता होगी, लेकिन वो संस्कार हमारी बुद्धि में अटक के न रह जाए। बात तो चली जाती, खत्म हो जाती है, लेकिन वो बात अगर रह गई ना तो बहुत दिनों तक याद रहती है, और उस व्यक्ति को जब भी देखते हैं वही पुरानी घटना याद आ जाती है, और उससे उसके लिए घृणा, ईर्ष्या या कोई बात बदला लेने की भावना हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है दाता बनकर देते चलो, बस प्रेम स्नेह जिसमें भी जो कुछ भी हो ये देते चलेंगे, तो क्या होगा, जितना भी तूफान अर्थक्वेक आएगा, भूचाल होगा, कुछ, बस हमारे पांव ऑटोमेटिकली सेफ्टी की तरफ बढ़ जाएंगे। और क्योंकि हमें तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना है ना, अगर अर्थक्वेक या सुनामी या फ्लड पोर इनकी वजह से शरीर छोड़ा तो अंतमते सोगते हाहाकार चीत्कार मचा होगा, दुख अशांति होगी। तो ऐसे में अंतमते सो गति क्या होगी। तो चूंकि हमें इच्छा से वो छोड़ना है तो इसीलिए सेफ्टी की तरफ। इसी तरह और कौन सा आकाश का सबसे बड़ा गुण क्या है, विशालता। आकाश में सैटेलाइट छोड़ देते हैं, उससे ही तो ये सब मोबाइल काम करते हैं, टीवी रेडियो सब चीज। बस इधर से बात करी, दुनिया के किसी कोने में किसी से बात करते। ऐसी अगर आकाश की तरह हमारा हृदय विशाल हो, हर आत्मा से हमारा कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो। होता क्या है, जिनके प्रति हमारे संस्कार मिलते हैं, दोस्ती होती है, मित्रता होती है, उनसे तो हम बहुत देर तक बात करते रहेंगे, लेकिन जिससे संस्कार नहीं होंगे वो सामने से आ भी रहा होगा ना, तो भी हम नजर बचा के दूसरा रास्ता लेके चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे। ये विश्व महाराजन के लक्षण नहीं है। बाबा ने कहा इतनी आकाश की तरह विशालता हो, किसी की कोई कमी कमजोरी के लिए स्थान ना हो। कितना बड़ा है आकाश, लेकिन कम्युनिकेशन सबसे है। कोई भी मोबाइल टेलीफोन टीवी कहीं से कहीं पर भी स्थापित हो सकता है, क्यों, आकाश विशाल है, उसमें ये सैटेलाइट है। ऐसी आकाश की तरह विशालता हो तो क्या होगा, आकाश मार्ग से आने वाले जितने विनाश के साधन होंगे ना, वो हमें दुख कष्ट अशांति मृत्यु नहीं दे सकते। आकाश मार्ग से ही तो आएंगे, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल है, या बरसात का है, जितने भी ऊपर से आने वाले, ये सब हमारे सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। देखो आकाश अभी उत्तराखंड में जब लास्ट ईयर विनाश हुआ ना, बस एक तरफ तो क्लाउड बर्स्ट हुआ, ऊपर बादल फटा, पानी ऊपर से आया, फिर इतना पुर आया, कितने हजारों लोग मर गए, गुजरात से भी बहुत गए, लापता हो गए, पता नहीं चला। तो ये है आकाश जैसी विशालता अगर होगी, महानता, तो कभी भी ये हमारे मृत्यु दुख अशांति का कारण नहीं है। ऐसी चौथा तत्व वायु, वायु का क्या गुण है, हल्का, और इसी कारण से वायु हर चीज को ऊपर उठाती है और जो भारी चीज होती है वो नीचे आती है। जब कभी भी अगर हम भारी हो जाए, किसी से संबंधों में कटुता हो, कोई दुख का प्रसंग हो, कोई हो, तो व्यक्ति भारीपन का अनुभव करता है। लेकिन सदा जीवन में ना हल्के रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, गीत भी है ना, हल्के वायु। तो अगर हमें ये अभ्यास हो गया तो क्या होगा कि जितना भी साइक्लोन आएंगे, जो समुद्र के किनारे शहर होते हैं, हम भी बांग्लादेश गए हुए थे, बहुत तेज साइक्लोन, कहते हैं यहाँ तो आता ही रहता है, उड़ीसा के किनारे भी आता है, गुजरात में भी उधर जहाँ पर समुद्र है सौराष्ट्र के, कई बार उधर आ जाता है। तो इस रीति से साइक्लोन जितना भी तेज हवा चलेगी 200-300 किलोमीटर की स्पीड से बहुत नुकसान करेगी, लेकिन वो वायु हमारा नुकसान नहीं, क्योंकि वायु की तरह अगर हल्के रहना हमने सीख लिया ना, तो जैसे वायु को मित्र बना लिया। हर एक के गुण बहुत हैं, 10-10, 12-12, मैं तो समय के अभाव में सिर्फ एक गुण बता रहा हूँ, और लास्ट में अंतिम कौन सा तत्व रह गया, अग्नि। प्रकृति में अग्नि किस रूप में है, सूर्य के रूप में, सूर्य अग्नि का स्वरूप है। तो इसीलिए सूर्य की तरह ना हमें क्या करना है, जैसे वो सूर्य है, सूर्य के सम्मुख हमारा मुख होता है, परछाई पीछे होती है, और सूर्य की तरफ पीठ हो जाती है तो परछाई आगे चलती है। ऐसे ज्ञान सूर्य बाबा की तरफ अगर हमारा मुख होगा ना, तो ये जो छाया है यानी माया, कमजोरी, परछाई है, ये पीछे रहेगी, ये हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। लेकिन बाबा की तरफ अगर पीठ हो गई, बाबा को भुला दिया, तो कमजोरियां माया ये हमारा मार्ग प्रदर्शन करेंगे, हम उनके वशीभूत होकर के उनके पीछे पीछे चलते रहे। और अग्नि में सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है, हर चीज का रूप बदल देती है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कौन सा योग होना चाहिए, ज्वालामुखी योग। इतना तेज ज्वालामुखी योग हो कि अभी ऐसा समय आएगा, बहुत दुखी अशांत रोती रोती हुई आत्मा आए, लेकिन अगर मैं ज्वालामुखी योग रूप में हूँ रोती हुई आएगी, हंसती हुई चली जाएगी, उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। दुखी आत्मा आएगी, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाएगी। अशांत आत्मा आएगी, अशांति के वातावरण में उसी वाइब्रेशन को, प्रकंपन को फैलाती हुई चली जाएगी। उसका रूप बदलने की हमारी क्षमता हो। अंत में बहुत ऐसे आनी है परिस्थितियां जो ऐसे आत्मा है। तो बाबा का ये प्रत्यक्ष रूप देखा, ब्रह्मा बाबा का। बाबा के सामने जाते थे, ये पूछेंगे और वहां जाके बस बाबा को देखते सब भूल जाता था। एकदम खुशी, हल्कापन ऐसा महसूस होता था कि बस जैसे जीवन के सब कुछ सुख पा लिया। तो अभी यहां से यही संकल्प करके जाना है, बाबा की धरती पर आए हो, यहाँ के एक एक जगह में बाबा के प्रकंपन है, वाइब्रेशंस है। अंदर में कोई भी थोड़ा भी भारीपन हो कोई भी चीज का, क्योंकि कोई कमी कमजोरी होती है, हम चाहते हैं अपने पुरुषार्थ से हम उस कमी कमजोरी पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, क्या करना, बाबा के कमरे में जाना, बाबा से बैठ करके अच्छी तरह रूरन, बाबा इतने समय से ज्ञान में हूँ और सब कर लिया लेकिन ये संस्कार अभी तक मेरा पूरा नहीं गया है, बाबा अब मेरे अपनी शक्ति से तो नहीं, अब मुझे आपकी शक्ति के साथ मिल करके मेरे ये संस्कार को आपको दूर करना है। कागज पर लिख दो, भले नाम न भी लिखो, आज मैं अपना ये संस्कार यहाँ छोड़ के जा रहे हूँ, दान करके, क्रोध का, ईर्ष्या का, घृणा का, बदले की भावना का, लोभ का, कोई हो उसे बाबा की बॉक्स में डाल दो, बस बिल्कुल हल्के होके चले जाओ। यहाँ से जरा भी कोई भारीपन लेकर के नहीं जाना, फिर देखना बाबा आपको कैसे, ना बाबा तो सच्चे दिल पर साफ राज, बहुत भोला भंडारी भक्ति में भी कहते हैं ना। तो अगर हमने वाकई बाबा को यहाँ पर अपना सब कुछ दे दिया जो भारीपन है, बस बाबा देखो कैसे परिस्थितियों को बदल देता है। अर्जुन का भी है ना, वो उस परिस्थितियां बदलती, जब अर्जुन के पुत्र का अभिमन्यु का वध हुआ था ना, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि सूर्यास्त से पहले मैं, कौन था जयद्रथ, उसे मार दूंगा, लेकिन नहीं मार सका, सूर्यास्त होने लगा, सब कुछ होने लगा, तो भगवान ने क्या किया, परिस्थितियां बदल दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र चला के जयद्रथ का गला नहीं काटा, वो नहीं करेंगे, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल कर दी, बादल ला दिए, फिर उसने उसे मार दिया आदि आदि। तो ऐसे ही बाबा जो है हमारी जगह पुरुषार्थ नहीं करेगा, पुरुषार्थ तो हमें ही करना है, लेकिन परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएंगी। जो भी परिस्थितियां विपरीत है अनुभव करके देखो, हमने तो बहुत बहुत जीवन में अनुभव करके देखा है प्रतिकूल परिस्थितियां कैसे अनुकूल हो जाती हैं। और इस प्रकार से आज हम बस यही अंत में शुभ संकल्प लेके उठे कि बाबा बस आपको ही मुझे विजयी रतन बनाना है, माला का मणका बनाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं माला का मणका हूँ, बनाना है नहीं, बाबा से यही बोलो अपने सब कॉन्शियस माइंड में, ये फिक्स करो बस मैं विजयी रतन हूँ, मैं माला का मणका हूँ, मैं आत्मा हूँ। कल पहले भी बाबा आपने मुझे विजयी रतन बनाया था, माला का मणका बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो और कलप कलप आप मुझे बनाते रहेंगे और मैं बनती रहूंगी, बनता रहूंगा। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। सभी को ऐसा लग रहा था ना कि जैसे साकार बाबा के सामने बैठे हैं। मोहन भाई ने अपने अनुभव से सभी को साकार बाबा की प्रैक्टिकल अनुभूति करा दी ना। ऐसा नहीं लग रहा है ना कि यह बाबा नहीं है। बाबा तो हम सभी के साथ अव्यक्त रूप में है ही, और ये भूमि तो सबको अनुभव कराती ही है, और मोहन भाई जी ने तो अपने अनुभव से सबको साकार बाबा का प्रैक्टिकल अनुभव करा ही दिया। मोहन भाई जी को तो हम गुजरात के भाई बहने सभी जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, परंतु फिर भी हम थोड़ा काम था पहले नहीं आ सके, उसके लिए क्षमा। इसीलिए जरा उनका परिचय आपको दे देती हूँ। मोहन भाई जी का लौकिक जन्म देहरादून में हुआ है। 1963 में आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की और उसके पश्चात 1967 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से आपने मास्टर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद ONGC में सुप्रिंटेंडेंट की आप डिग्री यानी प्राप्त करने के बाद उस सेवा पर रहे। लगभग 28 वर्ष तक सर्विस करने के बाद 1996 में आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया और अपने आप को बाबा की सेवा में समर्पित किया। 1962 में आप इस विद्यालय के संपर्क में आए और संस्था के साथ सेवाओं में भी जुड़ गए। बिहार, आसाम और गुजरात में आप इस संस्था की कई शाखाओं को खोलने के भी निमित्त बने। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान आपके निर्देशन में भारत के विभिन्न प्रांतों से 12 पदयात्राएं भी निकाली गई और उस समय आप यूथ विंग के सचिव पद पर थे और वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर परिसर में एकेडमी कोऑर्डिनेटर के पद पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 1988 से आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर हैं। इसके अलावा आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है। माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट आदि कई जगह पर मतलब इनके अंदर जो विशेषताएं हैं उस अनुसार आपने इन विषयों पर प्रवचन करके अनेकों को लाभान्वित किया है। आपने अब तक करीब 500 से ज्यादा लेक्चर तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं तथा समय प्रति समय कई संस्थाओं जैसे LNT, ONGC, गेल, NTPC, IPCL, क्रिभको, रियलायंस और SR वीडियोकॉन, टेस्को, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज आदि में ऊपर लिखित विषयों पर प्रवचन भी दिए हैं। आपने मानव उत्थान के लिए USA, UK आदि कई देशों की यात्राएं भी की हैं और अपनी निस्वार्थ सेवाओं से जन जन को भी प्रभावित किया है। तो ऐसे विशेष आत्मा मोहन भाई जी का हम सभी स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि जिन्होंने अपने अनुभव से आज हम सभी को भरपूर किया। ओम शांति।